पृष्ठ संख्या 17, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, डॉक्टर छाया चटर्जी। परिचय। सामाजिक न्याय का साधारण अर्थ है समाज में सभी लोगों की मान मर्यादा का सुरक्षित होना, पूर्ण समानता सुनिश्चित किया जाना तथा शोषण से मुक्ति पाना। उदारवादी लेखक यह मानते हैं कि सभी को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हो ताकि वे अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सकें। राज्य की संस्थाएं समाज के सभी विशेष वर्ग के विकास में सहायक न हों। इसके विपरीत समाजवादी लोग यह चाहते हैं कि राज्य समाज के दुर्बल व पिछले वर्गों का कल्याण करे, सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर की जाए। न्याय का एक पक्ष सामाजिक है, जिस पर आधारित न्याय को सामाजिक न्याय कहा जाता है। लास्की ने कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ समान सामाजिक अधिकारों से है। इस प्रकार समाज में किसी वर्ग विशेष को न तो कोई विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए और न धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर किसी को इनसे वंचित करना चाहिए। सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य बन चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है। सामाजिक जीवन अनेक विविधताओं से पूर्ण है। समाज में परिवार है, चर्च है, संघ है, विभिन्न सांस्कृतिक व व्यवसायिक समुदाय हैं तथा विविध संप्रदाय और धर्मों को मानने वाले लोग हैं। भारत जैसे देश में भी जो जाति भेद भी है तथा सवर्ण और अवर्ण की समस्या भी है। इसके अतिरिक्त हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ निजी कानून हैं जिन्हें लागू करना न्यायालय का कर्तव्य है। न्याय की मान्यता का संबंध एक साथ कानून, अधिकार एवं कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों, पारितोषिक एवं दंड का यथोचित वितरण करने तथा व्यक्ति के संबंधों को जोड़ने से संबंधित होता है। इस प्रकार यह व्यक्तियों में समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व से संबंधित सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। विस्तृत अर्थ में न्याय सामाजिक जीवन को अनुशासित करने वाला और उसके सर्वांगीण विकास को विकसित करने में सहायता प्रदान करने वाला विचार है। पृष्ठ संख्या 18। हिंदी का न्याय शब्द अंग्रेजी भाषा का जस्टिस शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा का जस्टिस शब्द स्वयं लैटिन भाषा के जस्टिसिया एवं जस शब्दों के मिलने से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः बांधना और संबंध होता है। शाब्दिक अर्थ में न्याय का अर्थ सामाजिक हित की प्राप्ति से लिया जाता है। राज्य का लक्ष्य कानून द्वारा नागरिकों को न्याय दिलाना होता है। दूसरे शब्दों में न्याय राज्य के कानूनों द्वारा प्रवाहित माना जाता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य समस्त राज्य का कल्याण होता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हों और मनुष्यों का परस्पर सामाजिक संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। मनुष्यों के साथ जाति, धर्म, रंग तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक समानता सामाजिक न्याय का आधार है। सभी नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। लास्की के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ है समान सामाजिक अधिकारों का अस्तित्व। 20वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय को बहुत अधिक महत्व प्राप्त हुआ था। मुख्य रूप से इसका अर्थ समाज के सभी सदस्यों का समान मानना है और उन्हें समान अधिकार और सुविधाएं देना है। यद्यपि सामाजिक न्याय की अवधारणा इतनी पुरानी है और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है, उसने सामाजिक समानता को सामाजिक न्याय का आधार माना है। भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश पीवी गजेंद्र गडकर ने लिखा है कि सामाजिक असमानताओं को समाप्त करके सामाजिक क्षेत्र में प्रत्येक मानव को समान अवसर देना सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में समाज के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के विकास के समान अवसर देना, असमानताओं और विकास में बाधक बनने वाली बातों को दूर करना तथा समाज के पिछड़े वर्गों को विशेष संरक्षण देकर उन्हें बाकी समाज की बराबरी पर लाना है। पृष्ठ संख्या 19, सामाजिक न्याय के लिए व्यवस्थाएं। सामाजिक न्याय के लिए निम्नलिखित व्यवस्था होना जरूरी है। नंबर एक, कानून के समक्ष समानता। यद्यपि कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, फिर भी वे सामाजिक न्याय को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, इसलिए सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए कानून की नज़र में सभी को समान समझना जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि जाति, रंग, धर्म, लिंग, वंश और जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव न किया जाए, सभी के लिए एक जैसे कानून हो, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच आदि को खत्म कर दिया जाए जिससे सामाजिक प्रजातंत्र कायम हो सके। नंबर दो, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से सामाजिक न्याय कायम होता है, अतः समाज में सभी व्यक्ति समान समझा जाना चाहिए और सबको अपने जीवन के विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। व्यक्तियों के बीच उनके सामाजिक स्तर को लेकर ऊंच नीच आदि की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन, समान अधिकार। सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देकर उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर अपना विकास करने दिया जाए। सामाजिक न्याय की व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति या वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का कोई स्थान नहीं होता। व्यक्तियों के बीच जाति, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर अधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पिछड़ों को विशेष सुविधाएं। सामाजिक न्याय की यह विशेषता है कि समाज में विषमता न हो, इसलिए समाज का अगर कोई वर्ग पिछड़ा हो तो उन्हें विशेष सुविधाएं देकर बाकी समाज की बराबरी पर लाने की योजना पूर्वक कोशिश की जाती है। इस व्यवस्था को कानूनी तौर पर कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहा जाता है। नंबर पाँच, असमानता को हटाना। सामाजिक न्याय में फैली किसी भी तरह की असमानता को कम करने का प्रयास कर उसे दूर किया जाता है। भारत में छुआछूत को खत्म करना, बेकार लिए जाने पर रोक लगाना और महिलाओं एवं बच्चों के आर्थिक शोषण पर प्रतिबंध लगाना इसके उदाहरण हैं। पृष्ठ संख्या 20। नंबर 6, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक न्याय के लिए यह भी जरूरी है कि लोगों को बीमारी, बुढ़ापे, अपंग या अयोग्य होने के हालत में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। प्राकृतिक असमानता की वजह से लोगों को भूखे मर देना सामाजिक अन्याय और पाप है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सभ्य समाज में सामाजिक न्याय की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय स्थापित होने से लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता मजबूत बनते हैं और देश तथा समाज प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। सामाजिक न्याय और मानवाधिकार। विश्व के कुछ ही भागों में मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रताएं वास्तव में सुरक्षित हैं। अधिकांश क्षेत्रों में तो अभी तक कोई अर्थ नहीं है। मानव अधिकारों की घोषणा का मुख्य तत्व विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। मानवाधिकारों का संबंध मनुष्यों के व्यक्तित्व विकास से जुड़ा हुआ है। सच तो यह है कि मानवीय अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसो ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हर जगह जंजीर में जकड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक रक्तपात, जनधन की हानि तथा सर्वनाश ने विश्व को यह सोचने पर विवश कर दिया कि मानवता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए सुदृढ़ विधि अवश्य अपनानी जानी चाहिए। मानवाधिकारों के लिए नियुक्त घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग द्वारा मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा लगभग 3 वर्षों के प्रयासों के बाद तैयार किया गया, जिसे कुछ संशोधनों के बाद 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मानव अधिकार घोषणा पत्र ने प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। इस घोषणा पत्र में नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ट्रेड यूनियनों, विश्राम, शिक्षा, काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ट्रेड यूनियनों, विश्राम, शिक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, सामाजिक भरण पोषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, विचार, धर्म, शांतिपूर्ण सभाएं करने तथा संगठन बनाने के अधिकार सम्मिलित हैं। सारी दुनिया की जनता जानती है कि 30 अनुच्छेदों वाली यह घोषणा पत्र लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शक्तियों के बढ़े हुए प्रभाव के अंतर्गत मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक जनसाधारण की सशक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप की गई थी। इसकी प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। चूंकि यह घोषणा राष्ट्रसंघ की महासभा के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार की गई थी, इसलिए इसका कानूनी रूप से बाध्य होने पर कोई स्वरूप नहीं है। 30 अनुच्छेदों वाला यह घोषणा पत्र निम्नलिखित है। अनुच्छेद 1, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और अधिकार और मर्यादा में समान हैं। उनमें विवेक और बुद्धि है, अतएव उन्हें एक दूसरे के साथ भातृभाव युक्त व्यवहार रखना चाहिए। अनुच्छेद 2, प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के इस घोषणा में व्यक्त किए गए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। अनुच्छेद 3, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4, कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकता। दासता और दास व्यवहार सभी क्षेत्रों में सर्वथा निषिद्ध होगा। अनुच्छेद 5, किसी व्यक्ति के क्रूर या अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा और ना उसके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाएगा। अनुच्छेद 6, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह सर्वत्र कानून के अधीन व्यक्ति माना जाए। अनुच्छेद 7, कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा के विरुद्ध भेद नीति मूलक आचरण किया जाए या किसी को ऐसे आचरण की प्रेरणा दी जाए तो उस अवस्था में सब समान रूप से रक्षा के अधिकारी हैं। अनुच्छेद 8, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार होगा। पृष्ठ संख्या 22, अनुच्छेद 9, किसी व्यक्ति की अविहित गिरफ्तारी, कैद अथवा निष्कासन न हो सकेगा। अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित और खुले आम तरीके से सुने जाने को पूर्णतः समान अधिकार है। अनुच्छेद 11, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक उस पर खुले आम मुकदमे द्वारा, जिसमें उसे अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए उचित सुविधा प्राप्त नहीं रही है, अपराधी सिद्ध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 12, किसी भी पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं दिया जाएगा और ना उसके सम्मान और ख्याति पर आघात पहुंचाया जाएगा। अनुच्छेद 13, प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 14, प्रत्येक व्यक्ति को प्रताड़ना से बचने के लिए किसी भी देश में आश्रय लेने और सुख से रहने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 15, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। अनुच्छेद 16, वयस्क अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें विवाह करने और वैवाहिक संबंध विच्छेद के समान अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 17, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरे के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। कोई भी अपनी संपत्ति से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति तथा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत अपने धर्म या मत को परिवर्तन करने की स्वतंत्रता और अपने धर्म और मत का उपदेश, प्रयोग, पूजा और परिपालन सर्वसाधारण के सामने अथवा एकांत में करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अनुच्छेद 19, प्रत्येक व्यक्ति को मत और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अंतर्गत स्वेच्छा से मत स्थिर करने और किसी भी भौगोलिक सीमा और माध्यम के विचार और सूचना मांगने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अनुच्छेद 20, प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को किसी संस्था में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में स्वतंत्रता पूर्वक निर्वाचन प्रतिनिधियां द्वारा भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 22, प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते सामाजिक सुरक्षा का अधिकार रखता है और राष्ट्रीय प्रयत्न और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा एवं प्रत्येक राज्य के संगठन और साधन के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को, जो उसके गौरव और व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए आवश्यक हो, प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 23, प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के लिए पेशा चुनने, काम की उचित एवं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने और बेकारी से सुरक्षित रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए उचित और अनुकूल पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, ताकि अपनी और अपने परिवार की मानवीय प्रतिष्ठा के अनुकूल सत्ता कायम रखना सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 24, प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। अनुच्छेद 25, प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन स्तर कायम रखने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं सुख के लिए पर्याप्त हो। प्रत्येक माता पिता और शिशु के मातृत्व और शिशु की विशेष देखभाल और सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। पृष्ठ संख्या 24, अनुच्छेद 26, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक अवस्था में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है। माता पिता को अपने संतान के लिए शिक्षा के प्रकार चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 27, प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 28, प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिससे इस घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पूर्ति प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 29, समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव है। अनुच्छेद 30, इस घोषणा पत्र में दिए गए किसी भी आदेश के ऐसे अर्थ न लगाएं जिससे किसी राज्य को, समूह अथवा व्यक्ति को किसी भी काम में लगाने या करने का अधिकार मिले जिसका इस घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में किसी को भी नष्ट करने का उद्देश्य हो। इस घोषणा का महत्व इस बात में है कि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि ये अधिकार किसी विशेष जाति अथवा समुदाय के लिए ना होकर प्रत्येक मानव समाज के लिए है। सामाजिक न्याय का महत्व। सामाजिक न्याय का महत्व निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, व्यक्तित्व विकास। सामाजिक न्याय व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से जन कल्याण संभव होता है। इससे नागरिकों को अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 2, सामाजिक समानता। सामाजिक न्याय का लक्ष्य व्यक्तियों के समान सामाजिक स्तर प्रदान करना, समाज में वंश, लिंग, भाषा, नस्ल या वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और सार्वजनिक स्थल सभी के उपभोग के लिए सार्वजनिक रूप से खुले हों। पृष्ठ संख्या 25 नंबर 3। समाज सुधार, सामाजिक न्याय समाज में व्याप्त जाति या छुआछूत आदि कुप्रथाओं को समाप्त करके सामाजिक विषमताओं को दूर करता है। वह दहेज जैसी सामाजिक बुराई को दूर करके स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाता है। नंबर 4, आर्थिक समानता। सामाजिक न्याय आर्थिक समानता का मार्ग प्रशस्त करता है। वह सभी नागरिकों को आजीविका का अवसर प्रदान करता है और राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण को संभव बनाता है। यह भिक्षावृत्ति को दूर करके शोषण तथा अन्याय का उन्मूलन करता है। नंबर 5, अवसर की समानता। सामाजिक न्याय लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार जीविका खोजने व पाने का अवसर प्रदान करता है। सामाजिक न्याय से जीवन में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का उन्मूलन होता है और राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में लोगों को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। नंबर 6, शिक्षा एवं संस्कृति का विकास। सामाजिक न्याय से सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के समुचित अवसर उपलब्ध होते हैं। भारत में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों को शिक्षा के पूर्व अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार सभी वर्गों के लोगों को अपने सांस्कृतिक के प्रति उत्थान का अवसर भी सामाजिक न्याय ही उपलब्ध कराता है। नंबर 7, सामाजिक सार्वजनिक स्वास्थ्य। सामाजिक न्याय के फलस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है। निर्धनों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। बच्चों को पौष्टिक आहार व अन्य सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं। इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास में सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 8, कानूनी सहायता। सामाजिक न्याय गरीबों तथा असहायों को रास्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराता है। कानूनी जटिलताओं को दूर करने के लिए लोक अदालतों की स्थापना की जाती है जो सामाजिक न्याय पर ही आधारित है। श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में यह बात भुलाई नहीं जानी चाहिए कि आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यांकन और प्रतिनिधि सरकारों के निर्माण में सामाजिक न्याय एक प्रेरक शक्ति है। पृष्ठ संख्या 26, संदर्भिका पुखराज जैन 2006, राजनीति विज्ञान साहित्य भवन प्रकाशन आगरा, दुर्गादास बसु 2012, भारत का संविधान एक परिचय, लक्सिक्स नेक्सिक्स बटरवर्स बधवा नागपुर गुड़गांव, सिंघल सुरेश चंद्र 2004, समकालीन राजनीतिक समस्याएं, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा।